हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है और कृपा प्राप्त होती है शुद्ध हृदय से। हृदय के अंदर जो भौतिक आसक्ति है उसको और बुद्धि के अंदर जो भौतिक विचार हैं उन सब का परित्याग करके गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वितंतं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 28। कृपया मेरे साथ साथ भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। फिर से, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, फिर से अयुक्तः प्राकृतस्तब्ध षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते.
वन्स लास्ट.
अयुक्तः प्राकृतस्तब्ध षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते.
अयुक्त, अयुक्त मतलब होता है शास्त्रों के आदेशों को ना मानने वाला, यानी कि ऐसा करता. अभी भगवान हमें कर्ता के विषय में बता रहे हैं ना कि कार्य जो करते हैं वो, तो हम पहले सत्वगुणी बताया कि सत्वगुणी कर्ता कौन से होते हैं. भगवान ने कहा 26 में, मुक्त संगो न हन्वादी वृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते. जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में विचलित अविचलित रहता है, सात्विक कहता है. यानी कि बस वो अपना कार्य करता है जो गुणों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार उसके लिए निर्धारित किए गए हैं वो कार्य करता है और उसके अंदर कुछ भी आसक्ति नहीं होती है. उसकी मुक्त संगो ना ही आसक्ति होती है ना अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ. उसको चाहे परफेक्शन प्राप्त हो या फिर नहीं हो, वो फिर भी उत्साह के साथ धैर्य के साथ कार्य करता है. वो कौन है? सत्वगुणी है. और उसके बाद 27 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकात्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः. अभी आगे राजसी के बारे में जो रजोगुणी है ना उनके विषय में बोलते हैं. ऐसे लोग क्या करते हैं? जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, उनके हृदय में खाली ये होता है कि इस कार्य से मुझे कोई ना कोई लाभ होना चाहिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ. यानी कि ये नहीं सोचता कि आदेशों अनुसार है या नहीं है, बस वो सोचता है कि ये काम कर रहा हूँ उससे मुझे प्रॉफिट जरूर होना चाहिए. और आगे बताए सदैव ईर्ष्यालु, यानी उससे आगे अगर कोई निकलता है तो उसकी प्रति उसकी ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाती है कि वो मेरे से आगे क्यों निकला. और आगे भगवान ने कहा है अशुचि. अशुचि का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी पवित्रता नहीं हो, अपवित्र है और सुख दुख हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तित. ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन का सेकेंड लास्ट वर्ड है ना, एकदम लास्ट, हिंसात्मा को शुचि, तो ये है अशुचि का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी पवित्रता नहीं होती है, ना हृदय की और ना ही कर्म की. और आगे कहा कि हर्ष शोकान्वित करता राजस, यानी कि हर काम में थोड़ा सा सफलता होगी तो सुख हो जाएगा, असफलता हो जाएगा तो दुखी. ऐसा कौन सा है? राजसी. आज भगवान हमें तामसी कर्ता के विषय में बताते हैं. पहला ही बताया अयुक्त, यानी कि सत्वगुणी जो करता है उसके एकदम अपोजिट अयुक्त, यानी कि बिल्कुल भी शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करेगा, सारे गलत कार्य करेगा. प्राकृत का मतलब होता है भौतिकतावादी, यानी कि उससे शास्त्रों का पहला आदेश क्या है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, लेकिन उसको सिर्फ भौतिकता, ये जो प्रकृति है उससे बना हुआ शरीर और उससे रिलेटेड चीजों को ही खाली जानता है और किसी चीज को नहीं समझता, भौतिकतावादी होता है. स्तब्ध का मतलब होता है हठी. हठी का मतलब होता है कि बस वो अपनी बात मनवाएगा कि बस गले गलत होता है, शास्त्रों के अनुसार कार्य भी नहीं करता है, फिर भी हठी होता है कि भाई नहीं मेरी बात होनी चाहिए. और आगे शठ यानी कपटी. और नैष्कृतिक का मतलब होता है अन्यों का अपमान करने में पटु. बस हर वक्त इसको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग के साथ ना मैं अपमान करूं दूसरे लोग का, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होता है कि दूसरों की इंसल्ट होनी चाहिए. और खुद कैसा होता है आगे बताया, कोलस शठो नैष्कृति कोलस। अलस्य का मतलब होता है आलसी होता है, खुद से काम होता नहीं है और दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करता रहता है। और आगे विषादी दीर्घ सूत्री च, विषादी का मतलब होता है खिन्न, हमेशा उनको कोई ना कोई अफसोस ही रहता है। ना शुक्रे लोग नहीं होते कि है ना, भले उसको अच्छा मिल भी जाएगा ना, फिर भी वो खिन्न ही रहेगा, उसका भाव अंदर से इतना मतलब तमोगुणी कार्य होगा उसका कि एक तो दूसरों का अपमान करना चाहेगा और खुद से हमेशा खिन्न होगा। किसी चीज में प्रसन्नता या भगवान का शुक्र ऐसा नहीं, बस जो भी चीज उसे प्राप्त होगी ना उसमें कोई ना कोई बुराई देखेगा और अफसोस करेगा। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है कि काम उसको दो ना तो इतनी देर की, जो एक घंटे में काम खत्म होगा वो सुबह को शुरू करेगा और रात चला देगा, अभी तो वही काम उसका खत्म नहीं होगा और है ना कंटिन्यूस ऐसे ही देर देर से काम कराएगा। छोटे छोटे कार्य में ऊंग ऊंग कर काम करने वाला, देर लगाने वाला, इसका मतलब शवपा से बताता है कि बहुत ही सुस्त होता है, काम भी जल्दी से नहीं खत्म करता है और आलसी होता है, बस दूसरों की बेइज्जती करता है कि तुमने खुद ऐसा किया, तुम लोग खुद करते नहीं हो, सारा काम मुझे बोलते हो ये इस तरह, और बस ऐसे शास्त्रों के आदेश अनुसार भी काम नहीं करता। ऐसे कर्ता को श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कर्ता तामस उच्चति। कृष्ण ने कहा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चति, ये जो है वो तामसी कर्ता है, यानी कि भगवान ने यहाँ पर तामसी कर्ता की कितनी क्वालिटीज बताई, आठ क्वालिटीज की। आठ क्वालिटीज आप देखो अपने अंदर जज करो, भगवान हमें बताते हैं, देखो कितने अच्छे भगवान कहते हैं कि देख लो अगर इन तरह से आप काम करते हो तो आप तामसी हो। कौन कौन से बताए, प्राकृत, सबसे पहले देखो कि आप जो कार्य कर रहे हो शास्त्रों के आदेशों वाला है या शास्त्रों को नहीं मान रहे हो। प्राकृत यानी भौतिकतावादी, कि शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो, प्रकृति को ही सब कुछ मान के कार्य कर रहे हो या आध्यात्म की तरफ भी तुम्हारी कोई दृष्टि जा रही। शब्द यानी हटी हो, आप अपनी बात मनवा रहे हो या फिर जज करना आता है कि नहीं मैं सही हूँ वो गलत है, ऐसा करना आता है आपको या नहीं, बस कोई भी सही हो या गलत शास्त्रानुसार हो या ना मेरी बात मानी चाहिए, ऐसे तो नहीं। षठ मतलब कपट्टी, कि दूसरों को धोखा देने वाले हो। और दूसरा नैष्कृतिक का मतलब अन्यों का अपमान, ऐसे तो नहीं हो कि आप दूसरों का अपमान करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हो। अलस्य आलसी तो नहीं हो। और दूसरा दीर्घ सूत्री, ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दी जल्दी काम भी नहीं खत्म करते हो और सुबह से लेकर रात तक बस एक ही काम को चलाते रहते हो, देर लगाने वाले तो नहीं हो। अगर ऐसा है तो भगवान ने कहा कर्ता तामस उच्यते, ऐसा कर्ता तामसी कहलाता है। अनुवाद देखिए, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तमोगुणी लोगों की क्वालिटीज बताई हैं कि वो अगर इस तरह कोई तुमको काम करता हुआ नजर आए तो वो तमोगुणी है। और तमोगुणी काम करने से क्या होता है ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने 14.15 की सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में क्या बताया, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते, कि अगर आप तमोगुण में कार्य करोगे और ऐसे ऐसे कार्य करते रहे और एक दिन तमोगुण में भी आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मूढयोनिषु जायते, यानी कि फिर आपको कभी भी मनुष्य जीवन तो नहीं मिलेगा, पहले से सोच लो, फिर आपको पशु योनि ही मिलेगी अगर आपने तमोगुणी कार्य किया। और पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने 14.18 बताया, उसकी सेकेंड लाइन में बताया भगवान श्री कृष्ण जगन्य गुण वृत्तस्था अधोगच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं वो बहुत ही घृणित कार्य होता है। घृणित मतलब उसको, क्योंकि शास्त्रों अनुसार नहीं होता है, दूसरों का अपमान करने के लिए होता है और मतलब हट के कारण किया जा रहा होता है या फिर ऐसे ही किया जाता है तो वो घृणित है, यानी कि उसकी बहुत ही नापसंदीदा कार्य है, उसको कोई लाइक नहीं करता है। और उसका क्या होता है, अधोगच्छन्ति तामसा, अधो का क्या मतलब होता है कि वो अपनी स्टेज से नीचे गिरने वाला है। जगन्य गुण वृत्तस्था अधो मना आप नीचे मना सबसे नीचे नरक होते ना, भगवान कहते हैं आप अगर तमोगुण में रहकर कार्य करोगे तो नरक में चले जाओगे, इसलिए तमोगुण में रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। रजोगुण में फिर भी ऐसा होता है कि थोड़े चांसेस होते हैं कि आप ऊपर रहकर काम करो। सत्वगुण में ना आपको ऊपर ही जाना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्तो, सत्वगुण में आप ऊपर ही जाते हो, रजोगुण में रहकर कार्य करते हो, तो नीचे सेंटर में कहीं पर भी रह सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो कभी कभी, और अगर तमोगुण में कार्य करोगे तो आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य सुनाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। अब देखना चाहिए ना, भगवान ने मनुष्य बनाया है और मनुष्य के लिए शास्त्र बनाए हैं। आप अगर मनुष्य हो तो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, आपको ये देखना चाहिए कि मुझे क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। ऐसा थोड़ी है कि आपको तोड़ घरों की तरह बगैर कुछ जाने कार्य करो। इसी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकतावादी होते हैं, शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वाइन, विमेन, गैम्बलिंग एंड मीट ईटिंग, ये चार जो हैं वो चरण ऐसे हैं जो कि आपके धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं। अगर आप ये चार कार्य करते हो, यानी कि गोश्त खाते हैं, बहुत सारे लोग देखो सोचते नहीं तमोगुणी है सब, शास्त्र में मना किया गया है ना कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, पहले ही देख लो कि वो तमोगुणी है। अगर आपका कोई बंदा ऐसा करता है तो मना करो उसको कि बेटा आपको नहीं करना चाहिए वरना आपको नरक में जाना पड़ेगा, या फिर आपको मूढ़ योनि यानी कि दूसरे जन्म में आपको डेफिनेटली जानवर बनना पड़ेगा, आप इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है कि आपको गोश्त नहीं खाना चाहिए। उसके बाद वाइन जो शराब पीते हैं उनके लिए भी कहा गया कि वही वो तो तमोगुणी सबसे बड़ा कार्य। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अच्छे से लोग भी शराब पीते हैं और शर्म भी नहीं आती, सबके सामने पीते हैं, घरों में बैठ के और बोलते भाई हम लोग पहले ड्रिंक करेंगे उसके बाद खाना खाएंगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों को अगर कोई अपराध करे तो छुप के करना चाहिए ना, ताकि दूसरों को नहीं पता चले। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ऐसा तीर कमान कर रहे हैं, उसे बोलते ना तीर मार रहे हैं बड़ा, ऐसे नहीं। फिर भी ना अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अधोगति को जाते हैं। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं ना शास्त्रों की बात, तो आप बोल देते कि भाई अभी आप लोगों के शास्त्र वास्तव मुझे नहीं समझ में आते, हमें जो मर्जी आएगी वो करेंगे, तो फिर उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, अकरणीय कार्य हैं ये सारे, ये चार नियम तो बिल्कुल शास्त्रों में बिल्कुल मना किए गए हैं, वाइन, विमेन, दूसरे परिस्त्री का संग करना, शराब पीना, जुआ खेलना और मीट ईटिंग करना, ये सब बिल्कुल अकरणीय, नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर भी करते हैं जो लोग प्रायः भौतिकतावादी होते हैं, उनको सिर्फ अपने शरीर की चिंता होती है, वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। यानी कि जो गुण उनके अंदर हावी हो जाता है, कभी कभी उनके अंदर सत्वगुण हावी हो जाता है, देवताओं की पूजा करते हैं और बोलते हैं आज मैं पीर को नहीं खाता हूं, मैं ना थर्सडे को नहीं खाता हूं, तो उस दिन जैसा भी उसका गुण उत्पन्न हो जाता है ना, तो उस हिसाब से कार्य करते हैं। हमें गुणों को जो है वो कंट्रोल करना है, जो भी गुण उधर हुआ है ना, ऊपर हुआ है, उसको हमें शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नीचे करना है, दबाना है कि नहीं अभी अगर जैसे तमोगुण हावी हो जाता है और हम चाहते कि भाई हम अभी है ना ये काम नहीं करें, सुस्ती करें, लेकिन फिर भी अपने तमोगुण को सत्वगुण के हथियार से उसको घेराना है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी पड़ेगी, मैं कैसे तमोगुण अपने ऊपर हावी आने दे सकती हूँ। और अगर रजोगुणी हावी हो जाता है कभी और हमें कोई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर हमें अपने आप को समझाना होता है कि नहीं इच्छा कैसे कर सकती हूँ मैं, जो भी सिद्धि सिद्धियों निर्विकार है उसके अंदर कोई सिद्धि हो रही है नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ भगवान की खुशी के लिए कर रही हूँ। तो फिर अपने ऊपर इन गुणों को हावी नहीं होने देना है, इन गुणों के ऊपर अपने शुद्ध सत्व को हावी होने देना है। लेकिन ये तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, गुणों के चपेट में आ जाते हैं और बोला वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशानुसार नहीं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ वैसे नहीं कार्य करते, बल्कि जैसा प्रकृति के गुण उनसे करवा रहे हैं वैसा करते। ऐसे करता भद्र नहीं होते, भद्र माना सोफेस्टिकेटेड नहीं होते, अच्छे नहीं होते, सिविलाइज्ड नहीं होते हैं, और सामान्य सदैव कपटी यानी धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। ऐसे होते हैं बस, दूसरों अगर कोई उनको समझाता है ना कि देखो ये शास्त्रों में बोला गया ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो भी वो क्या करते हैं उनका ही अपमान कर देते हैं, बड़ा है हम लोग को समझाने वाला, तुम लोग खुद कैसे करते रहते हो, हरे कृष्ण वाले कैसे हैं सारा, तभी उनका ही खोल के बता देंगे कि आप लोग ऐसे करते हो, आप लोग ऐसे करते हो और हमें आके बता रहे हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो छोड़ दो। मैंने कि बस सामने वाले का अपमान अच्छा भी बताएंगे ना, उसको बताएंगे, उसकी मदद करने के लिए आएंगे और उसको अच्छी सलाह भी देंगे ना, तो वो भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो भी अपमान कर देंगे। वे अत्यंत ही आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते हैं और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, यानी कि हो रहा होता है काम फिर बोलते हैं छोड़ो यार अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, अभी कौन सा काम करना है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने के लिए, और साइड में रख देंगे, बोलेंगे बाद में कर रहे हैं, और बोलेंगे बाद में कर रहे हैं। अतएव वे खिन्न रहते हैं, यानी कि उनका कोई काम भी परफेक्ट नहीं हो रहा होता है और सब कुछ इन दूसरों का अपमान करके भी हृदय में एक खिन्नता आ जाती है ना, कि दुख एक तरीका, भले वो उनको दूसरों को दिखाते हैं कि हम कितने सुखी हैं, हमारी देखो सब बात चल रही होती है, इवन वो अपनी बात चलाते हैं हट करके, अपनी बात पूरी भी करते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर एक दुख का अभाव होता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि हम लोग सबका अपमान कर रहे हैं और कोई भी हमसे खुश नहीं, कोई हमसे प्यार नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है वो अंदर से दुखी होते हैं। जो काम एक घंटे में हो सकता है वे उसे वर्षों तक घसीटते रहते हैं, यानी कि फटाफट कर नहीं लेते हैं, करते ही नहीं है। मैं भी ऐसी हूँ, पता है एक मुझे बुक दी है प्रभु ने लिखने के लिए, मैं जब देखती हूँ मुझे इतने 2-3 महीने हो गए हैं, अगर 15 दिन में मैं बैठूँ ना मुझे कर लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल तमोगुणी हूँ, देखना अभी जानवर बनने वाली हूँ। ऐसा है कि ना जल्दी कर लेना चाहिए ना काम जो आपको दिया गया, ऐसे घसीटते रहते हैं वर्षों तक, खत्म होता ही नहीं उसका काम। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, यानी कि जल्दी काम नहीं करते, बहुत देर करा देते हैं, और ऐसे करता तमोगुणी होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आप तमोगुणी हो, ऐसे अगर काम कर रहे हो जल्दी जल्दी काम करना चाहिए अपना, और जल्दी काम खत्म करके अपना है ना नियत कर्म को खत्म करना चाहिए, और अपना जो वाकई में सवय पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अदोक्षजा अहितु की अप्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तुम्हारा जो रियल काम है, तुम वास्तव में आत्मा हो, और आत्मा का काम क्या है कि भगवान की सेवा करना, या तो भक्ति अदोक्षज अदोक्षत भगवान, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। उधर आओ ना, अगर तुम अपने ये भौतिक कार्य भी सुबह से लेकर रात तक करते रहोगे तो फिर भक्ति कब करोगे, भगवान की पूजा कब करोगे, जब कब करोगे, तो वो सारे काम आपको करने हैं, इसलिए जल्दी से काम निपटाओ, खत्म करो, किसी काम को है ना घसीटो नहीं इतने टाइम तक चलाने के लिए, फिर बोलोगे मुझे ये भी करना है ये भी करना है, मैं कैसे लेक्चर सुनो, लोग लेक्चर भी नहीं सुनते, बोलते आज पूरा दिन मुझे काम में गया, काम में जाता है बट आधा घंटा लेक्चर के लिए जल्दी से निकाल लेना चाहिए ना, कहीं से भी लेक्चर के लिए और माला करने के लिए टाइम निकाल, तो बस यही दो काम तो करने होते हैं, और कौन सा, हम लोग है ना बहुत सारी भक्तियां करते हैं भगवान की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तामसी लोग ऐसे करते हैं। इस चैप्टर में भगवान हमें, जैसे हमें भगवान ने 14 में 17 में 18 में गुणों के विषय में बताया है, बहुत सारे गुणों के विषय में बताया है कि कौन कौन से गुण का हावी होते हैं तो क्या होता है, और भगवान ने श्लोक नंबर 18 में हमें बताया, ज्ञानम येयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म च कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देते हैं, और इंद्रियां कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन है, यानी कि वो कर्म को प्रेरणा देते हैं और इनके जरिए कार्य किया जाता है। और इसके बाद भगवान ने कहा, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण वेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। ज्ञान कर्म तथा कर्ता तीन प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ उनके विषय में, यथावच्छृणुतान्यपि, तुम कृपा करके मेरे से सुनो। अब आप सबने ये सुन लिया ना कि ज्ञान कर्म और कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिए। अब आप बताओ ज्ञान जो होता है वो सत्वगुणी ज्ञान कौन सा होता है, मैं प्रश्न कर सकती हूँ ना, अभी मैंने बता दिए सारे। सत्वगुणी ज्ञान कौन सा होता है भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 20 में, भगवान ने कहा, सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। अर्थात जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान जानो। यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति का जो संसार का जो ज्ञान है ना, उसकी तो बात ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है उसमें तो ये है ही नहीं ना कि सारे जीवों के अंदर एक ही परमात्मा है, वो तो बता ही नहीं। जो आज इसका मतलब है जो नॉलेज हम यहाँ पर हासिल करते हैं वो सात्विकी नॉलेज नहीं है, वो सात्विकी ज्ञान नहीं है। क्योंकि सात्विकी ज्ञान क्या है कि समस्त जीवों में, समस्त शरीरों में एक ही परमात्मा को अगर हम देखते हैं तो वो है सात्विकी ज्ञान। तो जो जिस में हम सब में एक ही परमात्मा देखते हैं, उसका अंश देखते हैं, तो वो सात्विकी ज्ञान है। वहां से स्टार्ट होता है सात्विकी ज्ञान। और आगे बताया 21 में, अब यहाँ पर कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? रजोगुणी। किसी को याद है रजोगुणी ज्ञान कौन सा है? रजोगुणी ज्ञान में भगवान ने कहा पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान् पृथक् विधान वित्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। यानी कि हम जो भी ज्ञान है ना हमारे अंदर, यही है ना कि हर शरीर में अलग अलग लोग देखते हैं, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो लड़का है, लड़की है। ये राजसी ज्ञान होता है और भगवान ने उसको राजसी ज्ञान कहा है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने तामसी ज्ञान के विषय में बताया श्लोक नंबर 22 में। मुझे श्लोक, ये सारे श्लोक्स के ना क्वेश्चन बना के सबसे पूछना है कि कौन कौन से ज्ञान कौन से हैं, कर्म कौन से हैं, कर्ता कौन से हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लो, आज मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ। इसमें 22 में भगवान तमोगुणी ज्ञान के विषय में बताते हैं, यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सत्तम अहेतुकम् अतत्वाथ वदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो कि अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त हो जाता है, तामसी ज्ञान कहलाते हैं। यानी कि वो जानने की कोशिश ही नहीं करता कि इससे अधिक भी कुछ है, बस एक ही जो बिल्कुल तुच्छ चीज होगी ना उसी को सब कुछ मानता है। और फिर वो ज्ञान जो है वो कौन सा है? तमोगुणी ज्ञान है। उसी को चिमट कर उसी में लिप्त रहता है, सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करता, वो तमोगुणी ज्ञान है। और आगे भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कर्म के विषय में, श्लोक नंबर 18.23 में सत्वगुणी कर्म के विषय में बताया भगवान ने, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित काम फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। यानी कि बस ये बात सोचना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरा कार्य नियत कर्म है। नियत कर्म माना शास्त्रों के अनुसार मुझे वही कार्य करना है। और उसके बाद नियतस्य संग रहित, यानी उसके अंदर हमें कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है, संग रहित होना चाहिए। अराग द्वेषतः कृतम, उसके अंदर कोई राग भी नहीं रखना है, यानी उसके अंदर कोई प्रेम भी नहीं होना चाहिए, और द्वेष यानी उसके अंदर कोई शत्रुता नहीं होनी। बस ये मेरा कार्य है, मेरी ड्यूटी है। उससे ये नहीं सोचना चाहिए बस मैं बेजार हो गई हूँ इन कामों से कर करके, अभी मेरे को करने का दिल भी नहीं कर रहा है। लेकिन उसको अपनी ड्यूटी समझकर करना, अच्छे तरीके से करना, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है। और आगे बोला अफल प्रेप सुना कर्म, और ये भी नहीं सोचना है कि ये कार्य मैं करूंगा तो उसके बदले में मुझे बहुत सारे फल मिलने वाला है कर्म का। और अफल प्रेप सुना कर्म यत सात्विक का मुच्छते, ऐसा कार्य जो आप नियत है अपना तुम्हारे जरूर करना है और संग रहित काम, यानी उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, द्वेष भी नहीं है उसके अंदर, और आप बस कर रहे हो कि मुझे ये कार्य करना है और फल की कोई आशा नहीं कर रहे हो, तो वो परफेक्ट कार्य है। क्योंकि वो सत्वगुणी कार्य होता है, सात्विक कर्म है। अब सात्विकी में कोई इच्छा भी नहीं थी आपकी, बस आप कर रहे थे नियत कर्म, आपको करना है जो शास्त्रों के आदेशानुसार बस कर्म करना है, ना राग था ना द्वेष। और राजसी में कैसा है भगवान श्री कृष्ण बताते 24 में, यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त किया जाता है और प्रयास पूर्वक, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जाती है कि ये कार्य मुझे करना है और इसकी बदली में मुझे ये प्राप्त करना है, इसलिए मुझे करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल जिसके लिए की जाती है, बहुत ज्यादा प्रयास जिसके लिए किया जाता है, एवं मिथ्या अहंकार के बस मैं ये करके दिखाऊंगा, मैंने डन कर दिया है कि मैं करके दिखाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अहंकार भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कार्य होता है। क्योंकि फल के अंदर आसक्ति होती है और कर्म के अंदर परिश्रम होता है, तो ये रजोगुणी कार्य। उसके बाद तमोगुणी कार्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने 25 नंबर श्लोक में बताया, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर मोहवश शास्त्रीय आदेशों का की अवहेलना करके, यानी कि सबसे पहली बात ही होगी तमोगुण में जब बात होगी ना, तो सबसे पहली बात यही होगी कि शास्त्र के अंदर जो नहीं लिखा हुआ है वो आप कर रहे हो, जो भी कार्य लिखा हुआ है शास्त्र में वो आप नहीं कर रहे हो। अब रजोगुण में क्या होता है कि आप फिर भी वेदों का पालन करते हो, कभी कभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, उनसे मांगते हो, लेकिन तमोगुण में क्या होता है, बस उल्टा ही करके दिखाएंगे, शास्त्र के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी अवहेलना ही करेंगे, वही तमोगुणी होगा। समझ जाओ कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है ना, समझो वो तमोगुणी है। अगले जन्म में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ही मस्ट बिकम डॉग, ऐसे पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा कुत्ता बनेगा जो शास्त्र की बात नहीं मानता। कुत्ता माना जानवर बनेगा। और आगे बताए, जो कर मोहवश शास्त्रियों के आदेश, शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, उनको ये उसको बताओगे ना आप के आगे जाके आपको जानवर बनना पड़ेगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, बोलते हाँ भले आपको क्या हो रहा है, भले बने, हम लोग अपने मर्जी से करेंगे ना। और आगे बोलते हैं, हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो अपना कार्य कर ही नहीं रहा है तो सबको दुख होता है कि भाई ये सब बंदा है क्यों कार्य कर रहा है, जो उनके रिलेटिव होंगे जो वो सब दुखी होते हैं उसकी वजह से, ऐसा तमोगुणी कार्यकर्ता कहलाता है। कर्म ऐसा तमोगुणी कर्म होता है वो कहते हैं। और आगे कर्ता के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताए, बहुत ही सुंदर है 26 नंबर का श्लोक है। और कर्ता माना हम सब कर्ता है ना, और हमें देखना चाहिए हम कैसे कर्ता है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है या नहीं है इनमें से कुछ। भगवान ने सत्वगुणी कर्ता के विषय में बताया, मुक्त संगो नहन्वारी वृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, यानी कि अहंकार भी नहीं होता है, भौतिक गुणों में कोई उसके अंदर दिलचस्पी नहीं होती है, और संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना काम करता है। बस ये दो चीजें होती हैं कि मुझे संकल्प होता है कि मुझे अपना कार्य करना है और उत्साह के साथ करता है, कोई अटैचमेंट नहीं होती है, बिल्कुल मुक्त संगो नहनवादी, उसके फल से उस कार्य से उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती है और वो कार्य कर रहा होता है। और कितना अच्छा भगवान ने कहा, सिद्ध्य सिद्धियों निर्विकार, यानी उसको सफलता मिलती है या विफलता मिलती है उससे कोई विचलित नहीं होता है, वैसा करता जो है वो सात्विक है, उसे ऐसा सात्विक करता है। ऐसे भगवान के भक्त को भी है ना हमेशा सात्विक करता, यानी शुद्ध सात्विक में आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, बस उत्साह के साथ धैर्य के साथ अपना कार्य करना चाहिए और भगवान की खुशी के लिए यही सोचना चाहिए कि मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, भले सिद्धि प्राप्त हो रही है नहीं हो रही, कोई सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कोई समझ रहा है नहीं समझ, ऐसा नहीं छोड़ दो। आप उनको रोजाना बताओ कि भाई मुझे दुख हो रहा है, आपको सुनना चाहिए लेक्चर में रोजाना सेंड करती हूँ, आप सुनते भी नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना कार्य करना छोड़ दे, उनको अपना कार्य फिर भी करते रहना चाहिए और भगवान के अंदर विश्वास होना चाहिए कि कभी ना कभी कोई ना कोई से फायदा उठाएगा, अपना कार्य फिर भी करते रहना चाहिए, भगवान के विषय में सबको बताना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग हमारी बात मानते ही नहीं है तो हम लोग इनको नहीं बताएं, नहीं हमें अपना कार्य करना चाहिए, ऐसा बोलना भी चाहिए, सबको बताना भी, प्रचार भी करना चाहिए, लेकिन प्रचार जो है वो सबसे पहले आचरण से होता है। अगर हम खुद अच्छे आचरण होंगे ना हमारे तो दूसरों तक मेरी बात जाएगी। बोलने से पहले अपने जीवन में उतारना होता है, जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हम खुद नहीं करेंगे ना और किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे आप अभी खुद तो कर ही नहीं रहे हो, हम लोगों को बोल रहे हो, तो हमें सबसे पहले खुद करना चाहिए, जो फिलोसफी है, जो श्री प्रभुपाद के आदेश हैं, जो शास्त्रों के आदेश हैं, वो हमें खुद अपने जीवन में उतारने चाहिए, फिर हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को प्रीच किया जाता है कि देखो ऐसे करना है, सत्वगुण में काम ऐसे करते हैं, रजोगुण में ऐसे करते हैं, और फिर दूसरों को प्रीच किया जाता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने 27 में बताया, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुची हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्म करता तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, बस उसकी खाली एक ही इच्छा होती है कैसे मैं भोग करूं फलों का, और फल के अंदर बहुत ज्यादा आसक्त होता है, सदैव ईर्ष्यालु दूसरों से हसद करता है, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला होता है, वैसा राजसी कर्ता कहा गया। और आज हमने पढ़ा तमोगुणी कर्ता कैसा होता है, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध षठो नैष्कृति कोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है और जो भौतिकतावादी हठी कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, वह आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री होता है, ऐसा तमोगुणी कर्ता कहलाता है। तो आज हमें ये सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी ज्ञान कर्म और कर्ता के विषय में डिटेल से समझ दिया है, और आगे हमें भगवान और भी बहुत कुछ बताएंगे गुणों के अनुसार, क्योंकि ये गुण ही है जो हमें इस संसार में फंसा के रखे। और मेरे पास एक बहुत ही सुंदर श्लोक था जिसमें भगवान कहते हैं कि किस तरह से आपको इन गुणों से ऊपर आना है, लेकिन समय बहुत हो गया है, अब मैं आपको कल वो वाला श्लोक बताऊंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।